ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज हम श्रीमद् भागवतम के आठवें स्कंध का बारहवां अध्याय इसका शीर्षक इस अध्याय का नाम प्रभुपाद ने दिया है मोहिनी मूर्ति भगवान पर शिव जी का मोहित होना और श्लोक हम 38 श्लोक पढ़ेंगे थोड़ा सा लिखने से भूल हुई है इस श्लोक का एक अंग है जो नहीं लिखा गया है उसमें है श्री भगवान उवाच हमारे पीछे आप लोग बोलिए श्री भगवान उवाच दिष्ट्या तं विबुध श्रेष्ठ स्वाम निष्ठामात्मना स्थितः स्वाम निष्ठामात्मना स्थितः यन्मे स्त्री रूपया स्वैरम् मोहितोऽप्यङ्गमायया श्री भगवान् उवाच दिष्ट्या तं विबुध श्रेष्ठ स्वाम् निष्ठामात्मना स्थितः यन्मे स्त्रीरूपया स्वैरम् मोहितोपेङ्गमायया। श्री भगवान् वाच दिष्ट्या त्वं विबुध श्रेष्ठ स्वाम् निष्ठामात्मना स्थितः। यन्मे स्त्रीरूपया स्वैरम् मोहितोऽप्यङ्गमायया। माता जी, श्री भगवान वाच भगवान ने कहा दिष्टया कल्याण हो त्वं तुम्हारा विबुध श्रेष्ठ हे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ स्वाम अपनी निष्ठाम स्थिर दशा में आत्मना अपने आप स्थितः स्थित हो यत् क्योंकि मैं मेरे स्त्री रूपया स्त्री जैसे स्वरूप से स्वैरम् पर्याप्त मोहितः सम्मोहित अपि होते हुए भी अंगा हे शिवजी मायया मेरी शक्ति के द्वारा। अनुपाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। भगवान ने कहा हे देवताओं में श्रेष्ठ यद्यपि तुम मेरे द्वारा स्त्री रूप धारण करने की मेरी शक्ति द्वारा अत्यधिक पीड़ित हुए हो किंतु तुम अपने पद पर स्थित हो अतएव तुम्हारा कल्याण हो। तात्पर्य चूंकि शिव जी समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं अतएव वे समस्त भक्तों में भी श्रेष्ठ हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, अतएव उनके आदर्श चरित्र की भगवान ने प्रशंसा की और उन्हें यह कहकर वरदान दिया तुम्हारा कल्याण हो। जब भक्त कुछ गर्वित हो उठता है तो कभी कभी भगवान भक्त के भ्रम को दूर करने के लिए अपनी परम शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति द्वारा पर्याप्त सताए जाने के बाद शिव जी ने अपना सामान्य अविचल रूप धारण कर लिया। भक्त की यह स्थिति है, भक्त को किसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे कि भगवद गीता 6:22 में पुष्टि की गई है, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचालेत। भगवान में पूर्ण श्रद्धा होने से भक्त बड़ी से बड़ी परीक्षा में भी कभी विचलित नहीं होता। ऐसी निराभिमानिता उच्च कोटि के भक्तों में ही संभव है, जिसमें भगवान शंभु एक हैं। तो यह उक्ति भगवान की है, भगवान विष्णु। कथानक भाग से आप परिचित हैं, अध्याय के प्रारंभ में वर्णन किया गया है कि जिस समय भगवान का मोहिनी अवतार हुआ था, अवतार का मुख्य प्रयोजन था असुरों को ठगना, वंचित करना, बिविल्डर करना और देवताओं को अमृत पिलाना, देवताओं का पोषण करना। ऐसी स्थिति थी कि जब भी भगवान का अवतार होता है तो प्रायः शिव जी उस अवतार का दर्शन करते हैं, रूप का दर्शन करते हैं। परंतु इस अवतार के समय, जिस समय मोहिनी के रूप में भगवान ने अवतार लिया था, तो शिव जी वहां पर उपस्थित नहीं थे, उस रूप को देख नहीं पाए थे। इसीलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान का एक अतिशय कमनीय रूप में भगवान प्रकट हुए थे, वो स्त्री के रूप में, बड़ा रेयर होता है, भगवान प्रायः पुरुष मेल के रूप में अवतार लेते हैं, लेकिन इस बार एक विचित्र अवतार होता है स्त्री के रूप में, और वह भी अति कमनीय रूप। तो शिव जी के मन में इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई उत्कट की, हमें भी इस रूप का भी मुझे दर्शन करना चाहिए। इसके लिए शिव जी अपने परिकरों के साथ, उनके जो एसोसिएट्स होते हैं, और स्वयं अपनी धर्म पत्नी, विश्व की सर्वाधिक सुंदर स्त्रियों में से, विश्व सुंदरी स्त्रियों में से पार्वती जी हैं, पार्वती जी को लेकर भगवान के पास शिव जी गए। वहां भगवान से प्रार्थना, भगवान ने पूछा कि कैसे आपका आगमन हुआ, किस कारण से, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं शिव जी। शिव जी ने कहा कि भगवान, मैंने सुना है आपने अवतार लिया था स्त्री के रूप में, तो उस रूप को मैं भी, वो कैसा रूप, कमनीय सुंदर रूप था, मैं देखना चाहता हूं, मेरे देखने की इच्छा है। भगवान से जब शिव जी ने यह प्रार्थना किया, तो यहां पर श्रीमद् भागवतम में सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान कहे कि शिव जी, अच्छी बात है मेरा वह रूप देखना चाहते हैं, लेकिन वह जो मेरा स्त्री का रूप है, हमारी जो शक्ति स्त्री रूप में है, वह प्रायः जो कामियों को अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, कामिन्या बहुमन्य माना, कामी लोग जिसमें लस्टी डिजायर होता है तो उस रूप को देख उस बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा मानते हैं। और दूसरी इसमें बात है, एक और रिस्क है आपके साथ, संकल्प प्रभोदयम, मेरी ही शक्ति है, स्त्री रूप में मेरी शक्ति है, तो उसको देखने से प्रायः प्राणियों में संकल्प प्रभव, काम वासना कामेक्षा का उदय होता है। भगवान ने संकेत, आप एक योगी हैं, महात्मा हैं, सिद्ध हैं, क्यों इंटरेस्ट है वह रूप देखने का? आप अन्य हमारे विविध अवतार हैं उसको आप देखते रहते हैं, तो बहुत उचित बात नहीं है कि आप उस रूप को भी देखें। आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, योगी हैं, तपस्वी हैं, विरक्त हैं। लेकिन उन्होंने कहा मेरा कौतूहल है, मैं देखना चाहता हूं। तो भगवान ने संकेत किया, लेकिन संकल्प पर हो उदयम, उस रूप को देखने से काम वासना का उदय होता है। यह पूरा संकेत पर्याप्त था, लेकिन शिव जी की ख्याति है, आप लोग जानते हैं, एक बार कामदेव को मूर्तिमान जो देवता है, कामदेव लष्ट के देवता है, उसको भस्म कर दिया शिव। तो ठीक है, आप देखना चाहते हैं, तो रहकर भगवान अंतर्हित हो गए। निर्धारित भगवान ने नहीं बताया था कब दिखाऊंगा। लौट रहे थे शिव जी, लौट रहे थे तो रास्ते में एक जंगल था, एकांत स्थान था, उसके परिकर थे पार्वती से। दूर से ही शिव जी ने देखा कि एक स्त्री सर्वांग सुंदरी, प्रत्येक उसके अंग बहुत कमनीय सुंदर है, और एक अपने हाथ में गेंद ली हुई है और उससे खेल रही है। यह शिव जी ने देखा और उनके परिकर भी देख रहे थे, पार्वती भी देख रही थी। सहसा क्या हुआ कि हवा का एक झोंका आया और स्त्री जो ऊपर वस्त्र धारण की थी, साड़ी के अतिरिक्त ऊपर भी क्या कहते हैं, ऊपर स्त्री धारण करती है उसको, तो हवा के झोंके से तो स्त्री के कुछ विशिष्ट प्राइवेट पार्ट ऊपर भाग में था, वो नग्न जैसा हो गया। और शिव जी में पर्याप्त काम का उदय हुआ और इसने अकबर कितना पोजीशन, अकबर पार्वती उनकी धर्म पत्नी, विश्व की सर्वाधिक सुंदर स्त्रियों में उनकी पर्वत पत्नी वहीं पार्वती थी, और उनके सेवक जो उनके साथ रहते हैं परिकर लोग थे, एसोसिएट थे। शिव जी अपने को कंटेन नहीं कर सके, जी से स्त्री के तरफ बढ़े। स्त्री ने देखा शिव जी को तो थोड़ा सा वो अर्ध नग्न अवस्था में थी, उसको बड़ी लज्जा आई, भय भी हुआ कि एक पुरुष पर पुरुष हमारे था, तो वह जोर से भागने का प्रयास की। शिव जी उसके पीछा, इन लोगों को छोड़ दिया, ये लोग पार्वती और परिकर ही पकड़े, तो भागने का स्त्री प्रयास करती जैसे तैसे, लेकिन शिव जी ने पकड़ ही लिया और शिव जी ने पूरा पूरा अपने ग्रिप में, अपनी भुजाओं में स्त्री को भर लिया। इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाई स्त्री और जैसे तैसे शिव जी से छुड़ा दिया हाथ, उनके उनके ग्रिप से, उनके पकड़ से बाहर आ गई, दौड़ने लगी। और शिव जी अब आगे आगे, वह भगवान ही थे उस रूप में, स्त्री के रूप में आगे आगे जा रहे थे और शिव जी पीछे पीछे जा रहे थे। यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती इस प्रसंग में एक बात बड़ी विचित्र, जैसे प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि भगवान भाग रहे थे जो स्त्री रूप में थे, तो वनों में गए, उपमनों गए, नदियों में सब जहां तहां भाग रहे थे। विशेष करके भगवान उस स्थान से जा रहे थे जहां ऋषियों के आश्रम थे, छोटे छोटे कुटी जंगल में बनाकर रहते, ठीक उसी के गुजरते थे। भगवान आगे जाते थे स्त्री रूप में और शिव जी पीछे पीछे जाते थे। अंत में एक स्थिति आई कि वह, यहां स्पष्ट रूप से ऐसा वर्णन है क्या कि स्त्री जो स्त्री रूप में थी वह विष्णु रूप में हो गई, भगवान के रूप में। उसके बाद भगवान थोड़ा अदृश्य हुए, अदृश्य के फैसल के स्त्री रूप में दिख रही थी, उस विष्णु के रूप में देखा, फिर अदृश्य हो गए। तो शिव जी ने अपनी स्थिति को देखा, तो कितना भारी ऑकवर्ड पोजीशन, शिव जी के लिए इससे बड़ा दुर्गति का, अपजस का कुछ कारण नहीं हो सकता था। इतनी अच्छी ऑकवर्ड पोजीशन में थे कि कि एक स्त्री के पीछे भागे थे, अपनी पत्नी के सामने भागे थे, उनके परिकर भी थे, सेवक भी थे। बहुत उनको एम्बैरेसमेंट हुआ, लेकिन अंततः शिव जी अपने स्थिति में आ गए। तो स्थिति में आ गए पूर्णतः, तो भगवान प्रकट हुए उनके सामने, अब विष्णु रूप से प्रकट हुए। शिव जी पूर्णतः किसी प्रकार का उसमें शिव जी में लज्जा भी नहीं थी। अब ऐसे काम करने पर लज्जा होती है, शिव जी में लज्जा नहीं थी और किसी प्रकार का विक्लव था, घबराहट भी नहीं था। एकदम शांत रूप से पूर्णतः उनका मन भगवान में लगा हुआ था। शिव जी उस कटघरी के भक्त हैं, क्योंकि चेतना का जो फ्लो है, कॉन्शियसनेस का फ्लो है, भगवान के रूप के गुण के उसके बाहर जाता ही नहीं है। जो चेतना का जो प्रवाह है, जो कॉन्शियसनेस का फ्लो है, वो जो भक्ति है, भगवान की भक्ति और भगवान का रूप गुण, उससे बाहर जाता ही नहीं। शिव जी पुनः उस स्थिति में हो गए। तो उसी समय भगवान प्रकट हुए और भगवान प्रकट होकर यह श्लोक कहते हैं शिव जी से, दृष्ट्या तुम विबुध श्रेष्ठ। विबुध मतलब देवता, श्रेष्ठ मंत्र से, हे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, देवताओं में महादेव, सभी देवताओं में सर्वोत्तम देव, दृष्ट्या तम स्वाम, यह बड़े आपका कल्याण, अरे बड़े भाग्य की बात है कि आप अपनी पूर्व स्थिति में, निष्ठा में, अपने स्वभाव में आ गए। ये देखिए शिव जी के लिए बहुत भारी अपजस था, अकवर्ड पोजीशन था, कितना एम्बैरेसमेंट था, कितना अपजस हुआ, लेकिन फिर भी पुनः वो कृष्ण भावना भावित हो गए। आप लोग जानते होंगे कि शिव ये अपजस हुआ था ना शिव जी का, इसी कारण शिव जी के अपजस होता कीर्ति। भगवान भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन यदि तुम युद्ध नहीं करोगे, भले ही तुम्हें दया आ रही है लेकिन पलायित जो हो चले जाओगे, तो तुम्हारे इस दया की भावना को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, बल्कि यह लोग कहेंगे कि ऐसे तो विश्व का सर्वाधिक योद्धा बनता था, वीर था, लेकिन सेना को, भयावह कौरवों की सेना को देखा तो डर करके भाग गया। काय और तुम्हारा अपसूजस, विश्व के सबसे बड़े आर्चर के रूप में आज तुम ख्यात हो, लेकिन कल तुम्हारी ऐसी अकृत्रिम चापी भूतानी कथयिष्यन्ति ते व्याम, तुम्हारा अव्यय तीनों लोकों में, यहां तक कि स्वर्ग लोकों में तुम्हारी कीर्ति यश फैला हुआ है, लेकिन कल से तुम्हारा अपजस होगा। अकृत्रिम चापी भूतानी कथयिष्यन्ति ते व्याम, तुम्हारा अपजस होगा, अकृति होगी। और अर्जुन जानते हो संभावितस्य चाकृतिर मरादतिरिच्यते, एक संभावित व्यक्ति, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए ये जो अपजस है, मृत्यु से भी भयावह होती है। मरा तो दुख है ही, लेकिन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए संभावितस्य चाकृति, संभावित एक ऑनरेबल व्यक्ति, रिस्पेक्टफुल समाज में व्यक्ति है, उसका जो अपजस होता है, अपकृति होती है, तो मरण से भी ज्यादा दुखदायी होती है। शिव जी की यह स्थिति है, मरण से भी, यह अपजस तो हुआ ही है, एक स्त्री के पीछे भागे हैं, मरण से भी यह दुखद स्थिति है, अकवर्ड पोजिशन है, लेकिन शिव जी की श्रेष्ठता यहां भगवान कहते हैं कि लेकिन आप इस अकवर्ड पोजिशन में, खराब स्थिति में होने के बाद भी स्वाम निष्ठान स्थित, अपनी पूर्व प्रकृति में पूर्ण कृष्ण कॉन्शियस, कुछ भावना भावित हो गए, आप में किसी प्रकार का शोक नहीं, पूरा आपका चेतना पूरा पूरा मुझ में लगा हुआ है। तो यह श्लोक में बातें कही गई है। श्रील प्रभुपाद जी, जय श्री श्री राधा रास बिहारी जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री गौर निताई की। क्लास आज थोड़ा देर तक होता है ना? ठीक है, क्योंकि हमें लगता था कि मरा संघ 8:30 बजे खत्म करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसमें शिव जी अपने पूर्व स्थिति में निराभिमानता, और शिव जी के पर उसमें किसी प्रकार काम वासना नहीं है, एकदम पूर्णतः निवृत्त हो गए, किसी पर वासना नहीं, आप स्थिति में हो गए, भगवान उसी को अप्रिशिएट करते हैं और प्रभुपाद जी इसी पर हाईलाइट करते हैं, शिव जी की महानता पर। जैसा ओपनिंग भाग है इसमें तात्पर्य का, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिव जी सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। चूंकि सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी नेक्स्ट सेंटेंस कहते हैं कि वे सभी भक्तों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। शिव जी के बराबर कोई भक्त नहीं है। आप श्रीमद् भागवतम में जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, निम्न गा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। भागवतों की बात कही है, नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी गंगा जी है और देवों में, पूज्य व्यक्तियों में सबसे श्रेष्ठ कृष्ण है, भगवान है। देवा नाम अच्युतो यथा, बहुत लोग पूज्य व्यक्ति हैं लेकिन सबसे श्रेष्ठ पूज्य जिसकी आराधना करनी चाहिए भक्त, श्रेष्ठ कौन है? अच्युत कृष्ण। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, और वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शंभु। और फिर पुराणों में यह, वो बात पुराण की बात कहानी, पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कौन पुराण है? श्रीमद् भागवतम। तो श्री प्रभुपाद जी से ओपनिंग जो तात्पर्य में कहते हैं कि शिव जी वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे पूज्य हैं, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो भगवान वहां प्रकट होकर उनकी प्रशंसा करते थे, शिव जी आपकी ऐसी स्थिति है, इस स्थिति में आ गए आप, काम से परित्यक्त हो गए, मैं स्वयं स्त्री के रूप में था, मैंने भी आकर्षित किया, मेरे दर पूरा पूरा आप डिस्टर्ब हो चुके थे, लेकिन इस स्थिति में जाने के बाद भी आप तुरंत अपनी स्थिति में आ गए हैं। प्रभुपाद जी वह प्रसिद्ध श्लोक कोट करते हैं यहां पर, यम आधा श्लोक है, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुणात्म विचालते। भगवान भगवत गीता में छठे अध्याय में कहते हैं, योग की योग साधना जो योगी करता है, तो योग के साधना करता है तो उसके चिंतन का जो फ्लो है उसकी तुलना एक लौ के रूप में, दीपक का जो फ्लेम होता है उसमें, ऐसे घर में जहां वायु का प्रवाह नहीं है, दीपक जलाया जाता है तो उसका फ्लेम होता है लौ जाता है, तो थोड़ा बहुत हिलता डुलता नहीं है, उसमें वेफर नहीं होता है। वैसे ही जब योग में परिपक्वता आती है तो योगी का कॉन्शसनेस का फ्लो एकमात्र भक्ति में, भगवान की सेवा में रहता है, और वह स्थिति प्राप्त करने का पूरा पूरा सिद्ध हो जाता है योगी। सुखम आत्यांतिकम यद्दत बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रिय, उस अवस्था में जाने पर योगी को, भक्त को एक ऐसा सुख प्राप्त होता है, आत्यांतिक सुख, परम दिव्य सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसी कारण से वह बड़े से बड़े दुख का उसके जीवन में आता है उसे विचलित नहीं होता। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम, तो वह जो आध्यात्मिक ब्लिस है, ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस है, ब्लिस है, अनुभव करता है भगवान के रूप का ध्यान करके, था भगवान का चिंतन करके, भगवान की सेवा करके वह उसे प्राप्त हो जाता है, उससे अधिक और किसी के सुख को नहीं मानता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततम यस्मिन स्थितो न दुखे न गुणात् विचालते। उस स्थिति में यदि कोई आ जाता है, भक्ति की पराकाष्ठा में आ जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो संसार के किसी भी दुख से उसे थोड़ा भी घबराहट नहीं होती है, और दुख से दुख स्थिति में उसका चिंतन, जो उसका चिंतन भगवान की सेवा से विचलित है, उसमें लगाई रहता है। तो शिव जी की यह स्थिति हुई, इतने भारी अकवर्ड पोजिशन में डाले गए, स्वयं भगवान के द्वारा डाले गए थे। ऐसे शिव जी का जो बिविल्डरमेंट है, मोह है,
तथा अज्ञान है, आकर्षण है एक स्त्री के प्रति, तो वास्तविक रूप में किसी भौतिक वस्तु के नहीं है। कोई मटेरियल स्त्री, भौतिक स्त्री, सांसारिक स्त्री शिव को आकर्षित नहीं कर सकती है, इस स्वयं भगवान ही। लेकिन आपात दृष्टिकोण से सुपरफिशियली हम देखते हैं तो शिव जी एक स्त्री के प्रति आकर्षित हुए थे, सामान्य स्त्री से आकर्षित नहीं हो सकते। भगवान को भी अपनी पूरी ताकत लगाकर एक रूप बनाना पड़ा और शिव जी का जो आकर्षण था तो वास्तविक रूप में वो किसी स्त्री के भगवान की एक प्रति था, वो भगवान ही उस रूप में थे। फिर भी सुपरफिशियली देखा जाए तो शिव जी के लिए बड़ी भारी अकवर्ड पोजीशन था, एक स्त्री के प्रति आकर्षित हुए और वही अपनी पत्नी के सामने हुए थे, अपने एसोसिएट्स के सामने हुए थे, परिकरों के सामने हुए थे, लेकिन उस स्थिति में भी वो आ गए। तो प्रभुपाद जी इसी में कहते हैं, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुणापि विचालते। यदि उस अवस्था में कोई आ जाता है भक्ति की प्रकाष्ठा में, उसका सिद्ध हो जाता है, पूर्णतः कृष्ण भावना भावित कोई व्यक्ति हो जाता है, तो वह संसार के बड़े से बड़े लाभ अथवा बड़ा से बड़ा जो हानि है बहुत मिल भी जाता है तो उससे वो विचलित नहीं होता है। दुख आ जाए अथवा सुख आ जाए, सुख के प्रति आकर्षित नहीं होता, दुख से भी नहीं घबराता, पूर्णतः कृष्ण भावना भावित रहता है। इसके श्रीमद् भागवतम में आप लोग जानते होंगे, तो यहां हम भी वह बात कह लेना चाहते हैं। श्री प्रभुपाद जी की चर्चा कहते हैं कि जब भक्ति में व्यक्ति आता है तो वह संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। शिव जी में किसी प्रकार का दुख नहीं था, पहले बहुत दुख था स्त्री को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब ही अस्तित्व हुए तो एकदम किसी प्रकार का। एक भक्त भी होता है, जब वो प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। आप लोग जानते हैं भक्ति रसा मृत्यु के लगभग प्रारंभ में, प्रारंभिक अध्यायों में ही रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति के कैरेक्टरिस्टिक का वर्णन करते हैं। भक्ति है, विशेषकर शुद्ध भक्ति कृष्ण के प्रति आकर्षण है, तो उसके छह कैरेक्टरिस्टिक, छह उसमें शुद्ध भक्ति के गुण होते हैं। तो उसमें पहला है क्लेश अग्नि। भक्ति हमारे हृदय में उदित होती है तो भक्ति के प्रभाव से हमारा संपूर्ण भौतिक क्लेश पूर्णतः इराडिकेट होता है, नष्ट हो जाता है। क्लेश अग्नि। नेक्स्ट क्या है? सुभदा, मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेष आत्मा कृष्णा कर्षणी चा। तो जो प्रथम यहां की, जहां की साधन भक्ति में भी पूरा पूरा लग जाता है तो उस व्यक्ति का संपूर्ण क्लेश हमेशा के लिए पूरा पूरा नष्ट हो। तो शिव जी में क्लेश नहीं था। तो प्रभुपाद यहां पर एक इम्परेटिव जैसा है, शिक्षा के तरह यह बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त की यह स्थिति है, भक्त को किसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं होना चाहिए। भक्ति मार्ग से टलना नहीं, उसमें लगे ही रहना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा विचले। गुरु मतलब होता है भारी, ज्यादा। गुरु से गुरु तक भारी से भारी विपत्ति उसके जीवन में आती है, लेकिन फिर भी वह भक्ति मार्ग से विचलित नहीं होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में ही जब लक्ष्य कोई चीज में भाव भक्ति का उदय होता है, शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान्य शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, और अंत प्रीति तदवस्ती स्थले। कोई भक्त होता है, जो भक्ति आती है, विशेषकर वहां पर रूप गोस्वामी भाव भक्ति की बात कहते हैं, साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति, और भाव भक्ति के बाद तीन से प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति होती। जो भाव भक्ति के स्तर पर आता है तो उसके जीवन में शांति, शांति अव्यर्थ कालत्वम, एकदम किसी भी
शांति 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 अव्यर्थ कालत्वम, वह एक एक क्षण जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान की भक्ति में लगाता है। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति, एक गुण आता है भक्त में, यहाँ के संसार के भोगों से उपरम हो जाता है, विरक्ति हो जाती है, उसमें भोगों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान्य शून्यता, और भक्त कोई सम्मान की इच्छा नहीं करता, आता ही नहीं, मानुष आशा बंधन, और हमेशा उसको यह आशा दृढ़ रख हो जाती है कि कृष्ण जरूर इसी जन्म हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, यह आशा उसके हृदय से जाती नहीं, समुत्कंठा उत्कंठित रहा, इगर रहता है भगवान की सेवा के। नाम गाने सदा रुचि, नाम गान में रुचि हो जाती है, और भगवान के गुण को वर्णन में, भगवान की कथा में, भगवान के विषय में वर्णन में उसकी आस होता है। और अंतिम रूप गोस्वामी कहते हैं भाव भक्ति का, प्रीति तदवस्ती स्थले, भगवान की जो लीला भूमि है प्राकृतिक जगत में, जहां जहां भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं, तो वहां पर उसे बसने की रहने की इच्छा हो जाती है। तो हम कहते हैं कि यहां पर शांति टिपिकल उदाहरण है राजर्षि परीक्षित महाराज का, एकमात्र सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वी के, एक क्षण में ही उनको पता लगा कि मृत्यु दंड प्राप्त हुआ, कि आज के सातवें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, सब कुछ छीन लिया, यहां तक ये सारा भोग छीन लिया जाएगा, राज्य छीन लिया जाएगा, यहां तक शरीर भी छीन लिया, मृत्यु को आपको स्वीकार करना होगा। परीक्षित महाराज सुने, परीक्षित महाराज के ललाट पर थोड़ी चिंता की रेखाएं नहीं हुई, ऐसा रखा एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, जितना आनंद था राज्य को करने में, राज्य का चक्रवर्ती सम्राट होने, सब कुछ छोड़कर गंगा जी के तट पर बैठ गए, यह भी आसन्न मृत्यु है, सात दिन का मृत्यु भी हो जाएगी सर्प दंशन के अगर, लेकिन उनको किसी प्रकार का चिंता नहीं। दशत पलम गायत विष्णु गाथा, कहा है कि सुखदेव गोस्वामी से, ऋषियों से उन्होंने कहा कि आप ऋषि, मैं गंगा जी के शरण में हूं, मुझे किसी प्रकार का चिंता नहीं, हमको सर्प काट दे अथवा ऐसे ही हमारी मृत्यु है, केवल और केवल मेरी इच्छा है आप विष्णु गाथा भगवान की लीला का वर्णन किए। तो यहां पर शिव जी की स्थिति है, इतना भारी अपजश हुआ है, कल्पना किए कोई सन्यासी है, पूरे इंटरनेट में फोटो के साथ आ गया है कि वह किसी स्त्री के साथ गलत संबंध रखा हुआ है, उसका गुरु शिव कितना, सन्यासी शिव कितना खतरे में आ जाता है, यदि मान लीजिए फोटो के साथ छप गया, पूरे इंटरनेट में दे जाए, पूरे मंदिर के एक एक भक्त जानता है, वह सन्यासी अथवा गुरु अथवा कोई भक्त, कितना इंप्रेसमेंट हुआ है, अब उस अवस्था में भी एकदम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, कितनी भारी स्थिति हो सकती है, कितना वो मने, ये चीजा सब कुछ होगा, पूरे विश्व में बदनामी हो रही है, सभी मंदिरों में खबर चला गया, सभी भक्त लोग जानते हैं, शिष्य लोग भी जान गए हैं, फिर भी एकदम शिव जी में कुछ, यह तो पत्नी जान गई है क्या हो रहा है, किस दशा में, जो उनके नौकर चाकर थे वो लोग जान रहे हैं, बड़ा ऐसा शिव जी बनते हैं, लेकिन फिर भी एकदम कल कर्ष में बार बार रिपीटेडली उस बात को कहा गया था, अब विक्लो, किसी प्रकार का शिव जी में घबराहट नहीं था और लज्जा भी नहीं था, ऐसे लज्जा अच्छी बात है, कोई गलत काम हमसे होता है तो वो लज्जा होना एक गुण समझा गया है, लेकिन अब इतना नहीं हो जाना चाहिए कि भक्ति ही छूट जाए, लज्जा इतना लग गया छोड़कर बाहर का स्थान छोड़कर भाग गए, कहीं आएंगे नहीं, कहीं कहीं जाकर छुप गए, भक्ति ही छोड़ दिया, तो शिव जी में घबराहट नहीं हुई, इतनी भारी, भगवान जी को कहते मरणा दति रिच्यते अपजस संभावित चाकृतिर मरणा दति रिच्यते, शिव जी के लिए मरण से भी वह कष्टदायक स्थिति, इतनी भारी एक्सपोज हो गए थे, इम्ब्रासमेंट हुआ था,
अब अपजस हुआ था, अब कीर्ति होती, लेकिन फिर भी इसे कहते हैं शांति। भगवान में लगा हुआ है मन, पूरा पूरा भगवान में लगा हुआ है मन इसे। तो ऐसे शिव जी की स्थिति थी। तो भगवान यहां कहते हैं तीन श्लोकों में शिव जी के गुणों का वर्णन किया है। शिव जी आप ऐसा व्यक्ति हैं, मैंने प्रयास किया, मेरे द्वारा आकर्षित हो गए थे, आप में भी एजिटेशन आ गया था, अब इरिटेटेड थे, लेकिन आप ऐसा समर्थ हैं कि अपने पूर्व स्थिति में निष्कामता की स्थिति में आ गए। यह मैं बड़ा भाग्य से, किसी किसी में होता है, संभव नहीं होता, आप ऐसा समर्थ हैं कि इस अकवर्ड पोजीशन में जाकर एक स्त्री के प्रति पूरा पूरा आकर्षित होकर पुनः अपनी स्वाम निष्ठा, अपनी स्थिति में, अपनी स्थिति में वैष्णव नाम यथासंभव, एकदम आपका पूरा पूरा मन, आपकी पूरी पूरी चेतना भगवान मुझ में लगी हुई है, तो दृष्टिया आपका कल्याण हो, आपके अतिरिक्त यह कोई काम नहीं करता। क्या यन्मे स्त्री रूपया स्वयरम, पूरा पूरा स्वयरम मतलब एकदम कंप्लीट हमारे ग्रिप में, माया के ग्रिप में आप आ गए थे, लेकिन फिर भी आप अपने को बचा लिया, और आपको बचाने के लिए किसी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, किसी ने टोका नहीं, किसी ने कहा नहीं। आप लोग ऐसी एक प्रकार की घटना एक शिव जी के, ब्रह्मा जी के भी जीवन में हुई थी। आप लोग जानते हैं प्रसिद्ध कथा है, अपनी पुत्री के प्रति वो धावित हुए थे, उसे पकड़ने का प्रयास किए थे, उनके जितने पुत्र से कह रहे थे पिताजी ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, आपके योग्य नहीं उनके, और भी तो पुत्र सब लोग मना कर रहे थे। मना करने के बाद भी वो नहीं माने ब्रह्मा जी, हालांकि एक पॉइंट उन्होंने रियलाइज किया, लेकिन उनके सभी पुत्र मना कर रहे थे पिताजी ये क्या कर रहे थे, हमारी बहन है, आपकी पुत्री है, इसके प्रति कैसे आप आचार्य हैं, इसके पीछे आप क्यों धावित हो रहे हैं, इसको क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी किसी को बल्कि श्राप दे दिया, किसको श्राप दे दिया, तुमने हमको डांट दिया, जो लोग माना गए वो लोग बहुत श्रापित भी हो गए अंत में। तो ब्रह्मा जी की स्थिति, फिर उनको होश आया, लेकिन बहुत बाद में आया। और शिव जी के भगवान कहते हैं कि स्वयं, इसमें शब्द का प्रयोग किया है, आत्मना, आपको किसी ने कहने नहीं गया, पार्वती जी में साहस नहीं बटोर सकी कि कहूं गया ऐसा नहीं करना चाहिए दूसरे स्त्री के साथ, वो सेवक लोग बचाए वो तो ऐसे ही डर रहे थे शिव त्रिशूल घुमा देंगे तो क्या न तो कोई देवता आया। तो आत्मना स्थित, शिव जी की स्थिति मन की कितनी ऊंची स्थिति है, एक बार रियलाइज हुआ कि गलती है और पुनः प्रतिष्ठा। तो भगवान यहां उनकी प्रशंसा करते हैं आत्मना, और देखिए भगवान एक शब्द का प्रयोग करते हैं शिव जी के अंग, अंग समझते हैं, वैदिक साहित्य में किसी को संबोधित सबसे प्रिय संबोधन है अंग। अंग मतलब आप मेरे ही एक हृदय, हमारे शरीर के ही आप टुकड़ा हैं, मुझमें आप में भेद नहीं है। अंग किसी व्यक्ति को हम संबोधन करते हैं, प्रिय कहते हैं, और कहते हैं सबसे, जो वैदिक साहित्य में, वैदिक ग्रंथों में जो अतरंगता का जो एड्रेस है अंग, अंग समझते हैं ना, जैसे हाथ मेरा अंग है, तो शिव जी को कहते हैं अंग, आप मेरे अंग ही हैं, इतनी प्रिय हैं हमारा, हमको अपना अंग जितना प्रिय होता है उतना और कोई नहीं प्रिय होता है, लेकिन आप हमको बहुत प्रिय अंग, मोहित अपि अंग, ये मेरे प्रिय शिव आपका कल्याण बहुत महान है, आपके बराबर किसी की महानता नहीं हो सकती। तो शिव जी यहां पर उनके भक्ति भाव की भगवान प्रशंसा, शिव जी के भक्ति की प्रशंसा श्री भगवान करते, और दो श्लोकों में, तीन श्लोकों में उनके गुणों का, शिव जी के गुणों का वर्णन भगवान ने किया है, जिसमें एक निर्भिमानता और कामहीनता, किसी प्रकार का शिव जी में लष्ट हो ही नहीं सकता है, वह भगवान ने, हम जैसे न्यूफाइड जो साधक हैं भगवान सेवा में
रखना चाहते हैं उन लोगों को सावधान करने के लिए भगवान ने यह एक विशिष्ट लीला की कि दूसरे साधु लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती यही कहते हैं भगवान आश्रमों के आगे आगे चल रहे थे जहां कुछ लोग साधु लोग जप कर रहे थे आश्रम के कुटी के सामने बैठकर तो भगवान उसी के आगे आगे गुजरते थे पीछे पीछे सीज तो वहां पर प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान दिखाना चाहते थे सावधान रहिए अभिमान में नहीं हो जाइए एकांत में रहते हैं कुटी में रहते हैं तो काम नहीं है आपके नायक है ना लीडर है ना देखिए उनकी क्या दशा है तो अभिमान नहीं होना चाहिए तो उन लोगों को साधकों को भविष्य में जो साधना करने आएंगे उनको कितना सावधान होना चाहिए इसके लिए भगवान ने लीला की थी शिव जी को उस स्थिति में रखा था लेकिन शिव जी में किसी प्रकार का काम विकार हो ही नहीं सकता है जो हुआ था वह स्वयं भगवान के प्रति हुआ था किसी स्त्री के प्रति नहीं हुआ था तो शिव जी की महिमा है ठीक है हम यहाँ समाप्त करते हैं कोई प्रश्न शब्द बोले कभी
हरे कृष्ण महाराज बहुत अच्छा प्रवचन दिए मेरा ये प्रश्न है कि शिवजी का पजस फैल गया फिर भी वो अपने स्वरूप में आए भगवान उनको भगवान की सुरक्षा में रहे लेकिन हमारे भक्त समाज में कोई अगर ऐसा बात फैला कुछ गलती जान अनजान में कुछ गलती हो गया लेकिन अगर फिर अपने स्वरूप में आएगा भक्तों में हो सकता है सही बोले निकाल दो इसको भगा दो लेकिन वो फिर अब भगवान के नाम करके जप करके फिर भगवान की सुरक्षा में रह सकता है कि नहीं
रहना ही चाहिए ना
लेकिन
कोई बाय चांस कोई भूल हो गई त्रुटि हो गई तो उसका मार्जन भक्ति से ही ज्यादा और जप बढ़ाकर कीर्तन ज्यादा करके
रूपा जी महाराज बोल रहे हैं नेशनल हाईवे में भी एक्सीडेंट होने का चांस रहता है नेशनल हाईवे में भी एक्सीडेंट होने का चांस रहता है इसलिए हम जितना भी अपने को बोलें कि हम अच्छी तरह से भक्ति करेंगे लेकिन ऐसा स्थिति आ जाती है कभी कभी फिसलने का चांस रहता है लेकिन भक्तों समाज में कुछ बात फैल जाता है ऐसा क्या वैसा क्या लेकिन अगर नाम करके सुरक्षा भगवान के प्रोटेक्शन में रहेगा तो हो सकता है बाह्य दुनिया में कोई उसको निंदा भी करे लेकिन भगवान की सुरक्षा में रह सकता है ना ये मैं
हाँ धन्यवाद रहना ही चाहिए कोई दूसरा
फिर दूसरा एक प्रश्न है कि बोलते हैं कि हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम तुम्हार स्थान अपराधे ना ही परित्राण गुरु का निर्देश है शिष्य के प्रति कि आप ये काम करो लेकिन वो सपज वो नहीं कर पा रहा है कुछ करते करते नहीं हो पा लेकिन वो भगवान की सुरक्षा में रह सकता है कि नहीं भगवान को प्रार्थना करके वही निर्देश फिर
हाँ भगवान के सुरक्षा में ही रहना चाहिए और तो इसको भगवान की सुरक्षा का कवच बनाकर वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए वह सुरक्षा का जो कवच हमको प्राप्त होता है भगवान की तो कि वैष्णव अपराध नहीं ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है तो हम लोग उसे अपराध नहीं होना चाहिए तो भगवान तो क्षमा भी कर देते हैं अपना उनके प्रति किया जाता है तो लेकिन भक्तों के प्रति होता है तो भगवान थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाते हैं ज्यादा क्रोध उनको आता है तो उसे बचने का प्रयास करना चाहिए यदि वैष्णव अपराध थे हाथी माता उपाड़े व छिंदे छिंदे तार सूख जाए पद भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्ति लता का जब वर्णन करते हैं चालू होता है लाइन गुरु प्रसाद पाए भक्ति ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु प्रसाद गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज माली हैया करे से बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले करे रोपण इसके बाद सिंचन करता है वो सब लता बढ़ती है भक्ति की लता कृष्ण के चरणों का आश्रय लेती है तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक सावधानी करना चाहिए उस अवस्था में यहां तक कि प्रेम प्राप्त हो गया है उस स्थिति में भी वैष्णव अपराध से बचना चाहिए क्योंकि कहते हैं यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, माता मतलब मतवाला के लिए है, माँ के लिए नहीं है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, मतवाला हाथी, उपाड़े व छिंडे तारे सुखी जाए पता। भक्ति जो लता है, क्रीपर की तुलना की गई, बहुत नाजुक है ऐसे जगह पर, तो हाथी के मतवाला, और हाथी जो मतवाला हो गया, पागल हो गया हाथी, तो उसे तो आएगा तो उसे या तो उपाड़े व छिंडे, या तो उसे नष्ट कर देगा, ऊपर से तोड़ देगा, अथवा अपरूट भी कर सकता है। वैष्णव अपराध, अरे उस लता इतना नाजुक है, एक बकरी भी खा जाएगी, बकरी को भी बचाए रखिए। नहीं, बकरी भी उसको खा जाएगी। छोटा सा आपके पास भक्ति लता का छोटा सा पौधा है, एक बकरी भी आ गई तो खा सकती है। और वैष्णव अपराध को तो तुलना हाथी से, और हाथी से जेंटिल हाथी से नहीं, कुछ हाथी होते हैं प्रोसेसर में चलते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं कर। पागल हाथी आप ला दिए तो इधर कुछ को मार देगा उसको मारे, और वो आपके गार्डन में मतवाला हाथी पड़े, तो उपाड़े व छिंडे। उपाड़े मतलब पकड़कर सीधे सोण से अप्रूट कर देगा, अथवा छिंडे अथवा ऊपर से ऐसे मार देगा, कट जाए। तो वह बहुत सावधानी के साथ, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंडे, उपाड़े मतलब अप्रूट कर देगा, अथवा छिंडे मतलब तोड़ देगा, एकदम नजदीक से, एक एक पता भी नहीं रहेगा, और सूख जाए तो टूट ही जाएगा नीचे से ही, तब तो जो भक्ति का जो फल है, फूल है, वो तो सूख ही जाने वाला है। फिर तो इसीलिए वह ज्यादा सावधान होना चाहिए ऐसे, इसका मतलब भगवान का अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा सावधानी इस बात में रहना चाहिए कि हमसे किसी वैष्णव का अपराध न हो जाए, गुरु का अपराध न हो जाए, साधु का अपराध न हो जाए। ठीक है, तो और कुछ बोलिए, थोड़ा जल्दी करना चाहिए।
हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि भगवान शिव परम वैष्णव हैं, भगवान कृष्ण परम वैष्णव हैं और भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, तो गोपियों का क्या स्थान है?
आपको थोड़ा सा पीछे बाद में पूछना चाहिए कि लंबा है, अब खत्म करना है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं एक दो सेंटेंस उत्तर नहीं दिया जा सकता, इसलिए कोई दूसरा प्रश्न एक्सेप्ट करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। ठीक है, सुन ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की।